भजन संहिता 42। भजन 42 के साथ हम भजन संहिता के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। भजन 42 पद 1। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मती 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहां भजनकार परमेश्वर के प्रति अपनी मनोकामना दर्शाता है। जैसे हिरनी पानी को तरसती है, वैसे ही प्रभु मेरा हृदय तेरे लिए तरसता है। यूहन्ना 7:37-38। यीशु ने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रत्येक मनुष्य के मन में परमेश्वर की प्यास है। हर मनुष्य के मन में परमेश्वर के साथ अर्थपूर्ण संबंध की गहरी प्यास होती है। ये प्यास ऐसी होती है जैसे भूख लगने पर और समझ में नहीं आता कि ये किस चीज की भूख है। आपके शरीर की रचना ये बताती है कि आपको किसी पदार्थ की आवश्यकता है, आपको भूख लगी है, परंतु आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये किस चीज की भूख है, इसलिए आप कुछ न कुछ खाते हैं ये जानने के लिए कि मुझे किस चीज की भूख है, और आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते। कोई भी चीज मेरी इस विशेष भूख को मिटा नहीं पाती, अर्थात ये भूख पहचानी नहीं जाती है। ऐसी ही प्यास भी पहचानी नहीं जाती है। जब मुझे कुछ कमी का बोध होता है, तब मुझे ये तो पता चलता है कि किसी चीज की कमी है। मुझे पता होता है कि मुझे जीवन में कुछ और चाहिए, परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चाहिए। जीवन में मेरे पास जो है इससे अधिक मुझे कुछ चाहिए। वास्तव में मेरे भीतर कहीं गहराई में मेरी आत्मा परमेश्वर की प्यासी है और परमेश्वर के साथ एक अर्थपूर्ण संबंध बनाना चाहती है। आश्चर्य की बात है कि लोग अपनी प्यास बहुत चीजों से बुझाना चाहते हैं। संसार को अपने चारों ओर देखें जिसमें हम रहते हैं, और आप देखेंगे कि लोग इस आत्मिक प्यास को विभिन्न अनुभवों से बुझाना चाहते हैं, शारीरिक या भाव संबंधी अनुभवों से। जब वे एक के बाद दूसरा प्रयास करते हैं, तब उनका उद्देश्य होता है, काश मैं उसे प्राप्त कर पाता, काश मैं उसे पा लेता जो मुझे संतुष्ट करे। सुसमाचार के इस विषय में वे ये समझकर लेखक बन जाते हैं कि उनको सही मार्ग मिल गया, इससे संतुष्टि मिलेगी, इससे मुझे वो मिलेगा जिसकी मुझे जीवन में तलाश है। वे प्रयास करते रहते हैं और इन चीजों के पीछे दौड़ते हैं, परंतु जब प्रयास का अंत हो जाता है तब वे पाते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, जैसे अन्य नाशवान वस्तुएं। इसलिए वे दूसरा मार्ग पकड़ते हैं और फिर तीसरा मार्ग, और इस तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि उनमें ये प्यास है। वे उस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं, परंतु नहीं जानते कि कहां और कैसे इस प्यास को बुझाएं। यीशु जब समरिया के कुएं पर सामरी स्त्री से बात कर रहा था, तब उसने उस स्त्री से कहा, यूहन्ना 4:13, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। अपनी पृथ्वी की अभिलाषाओं और सांसारिक खोज के संबंध में आपको इस पद को शीर्षक पद बना लेना चाहिए, अन्यथा आप फिर प्यासे हो जाएंगे। आपको वो वास्तविक संतुष्टि न मिलेगी जिसके लिए आपका मन ललायित है। जब तक कि परमेश्वर न मिल जाए और उसके साथ अर्थपूर्ण संबंध न बन जाए, आप ललकते ही रहेंगे। वो मनुष्य बुद्धिमान और धन्य है जो ये समझ सके कि उसकी प्यास परमेश्वर की प्यास है और परमेश्वर के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर ले। परमेश्वर ने ही उसे वो प्यास दी है और वही उस प्यास को बुझा सकता है। इसलिए भजनकार एक उदाहरण देता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हांफता हूं। भजन 42 पद 2 से लेकर 5 तक। जीवते ईश्वर, परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। वो स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंधरी अंदर क्यों व्याकुल है। यह भजनकार स्वयं से बात करता है। कभी कभी स्वयं से बातें करना स्वास्थ्यकार होता है, परंतु दूसरी तरफ स्वयं से बातें करना हानिकारक भी होता है। परंतु यहां भजनकार कहता है, मेरा प्राण शोकित हो जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। वो अपने आप से गिरा जाता है। जब भी स्वयं से बात करें तब उससे उभरने की बात करनी चाहिए। स्वयं ही अपने आप को उदासी, निरुत्साह और हार से उभारें। बहुत बार हम स्वयं से बातें करते हैं। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जैसे मेरे साथ हुआ है। संसार में सबसे बुरा मेरे ही साथ हुआ है। किसी ने भी ऐसा कष्ट नहीं सहा होगा। हम अपने ही दुखों में फंसे रहते हैं, परंतु भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंधरी अंदर क्यों व्याकुल है। और तब वो अपने प्राण को ये सलाह देता है। भजन 42 पद 5 में आगे लिखा है, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अब वो कहता है, ठीक है, उदास मत हो, परमेश्वर पर आशा रख, परमेश्वर सिंहासन पर है। जब हम उदास होते हैं तब हम इस सत्य को भूल जाते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर राज्य करता है, वो सिंहासन पर है। जब मैं ये भूल जाता हूं तब संसार को देखकर मेरे मन में विचार उठता है कि सब व्यर्थ है। जब मेरी छोटी बेटी पहली कक्षा में थी और लिखना सीख रही थी, तब ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन हम घर आए तो मुझे एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, सब व्यर्थ है, मैं भाग रही हूं। हम भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं और सब व्यर्थ है सोचकर भाग जाना चाहते हैं। ये इसलिए होता है कि हम परमेश्वर को भूल गए हैं कि वो सिंहासन पर है। परमेश्वर सबसे ऊपर राज्य करता है। मैं सबसे पहले ये स्वीकार करता हूं कि परिस्थितियां मनुष्य के नियंत्रण से दूर है। मेरा मतलब है कि हमारी नैया डूब रही है, परिस्थिति मनुष्य के हाथों से बाहर हो गई है, परंतु परमेश्वर फिर भी राज्य करता है। वो अभी भी सिंहासन पर है और आज वही मेरी आशा है। इसलिए जब मैं सारे संसार को देखता हूं, जब मैं पढ़ता हूं कि क्या कुछ हो रहा है, तब मैं अंदर ही अंदर व्याकुल होता हूं और कहना पड़ता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। मूर्ख, क्या तुमने पेपर नहीं पढ़ा? क्या तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? परंतु परमेश्वर पर आशा रख, वो ही बचाएगा। परमेश्वर कार्य करेगा, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। मैं इस बात से खुश हूं। भजन 42 पद 6। हे मेरे परमेश्वर, ये एक सच्चा अंगीकार है। भजन 42 पद 6 में आगे लिखा है, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना आवश्यक है। आप उसको छल नहीं सकते, आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते। यदि आप व्याकुल हो तो स्वीकार करें, उसके साथ ईमानदार बने। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। यहां कुछ लोग हैं जो कहते हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है? ओह, बहुत बहुत अच्छा। परंतु वास्तव में वे ढांक रहे हैं। चीजें भयानक रूप से चल रही है और वे व्याकुल हैं। वे अपने तर्क के अंत में आ गए हैं। उन्हें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो भी वे चेहरे पर अच्छे भाव दिखाते हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख प्रायः ऐसा ही करते हैं, परंतु परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार होना उत्तम है। प्रभु, मैं व्याकुल हूं, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। भजन 42 पद 6 से लेकर 8 तक। इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगे और लहरों में डूब गया हूं, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। चाहे मुझे लगे कि मैं परिस्थिति के वशीभूत हो रहा हूं, दुख तकलीफ और मुश्किलों का गुबार ऊपर आ रहा है, तो भी प्रभु आदेश देगा, उसकी प्रेम पूर्ण दया रात को और दिन में उसका गीत बनकर मेरे साथ रहेगी। धर्मशास्त्र में रात के गीतों का बहुत बार उल्लेख किया गया है। कुछ वर्ष पहले मैं पेंसिल्वेनिया में एक विशेष सभा में बोल रहा था। मैंने रात को खाने में मछली खाई थी। मछली दूषित थी। इसको खाने के कारण मैं बीमार पड़ गया। मैं सो नहीं पा रहा था। मेरा पेट जल रहा था और दुख रहा था। लेटे लेटे मुझे आराधना का एक सुंदर कोरस याद आया। मैंने इससे पहले नहीं सुना था। इस गाने को सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। ये प्रभु की बड़ाई और आराधना का गीत था। मैं गीत गाने लगा। मैंने उसे बार बार गाया। एक गीत जिसमें प्रभु की आराधना, प्रशंसा और धन्यवाद भरा था। मैंने सोचा, कितना सुंदर कोरस है, अच्छा होगा मैं उठकर इसे लिख लूं। मुझे सीढ़ियों से नीचे जाकर पियानो पर तर्ज बजाकर इसे लिख लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसे भूलना नहीं चाहता था। मैं इसको सिखाना चाहता था। ओह, परमेश्वर की आराधना का कितना अच्छा कोरस। मैं सोचने लगा, यदि मैं इस समय इस गीत को पियानो पर बजाने लगूं और मेरा मेजबान उठ जाएगा तो वो सोचेगा कि मैं भावुक हो गया हूं, शायद मुझे नीचे नहीं जाना चाहिए। परंतु मैं स्वयं काफी बीमार था कि बिस्तर से उठकर बत्ती जलाता और इसे लिखता, इसलिए मैं उसे बार बार गाता रहा। मैंने सोचा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, ये बहुत सुंदर गीत है, और मैं गाते गाते सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं चंगा हो गया था। प्रभु ने मुझे छुआ। अब मैं स्वस्थ महसूस कर रहा था, परंतु मैं कोरस को याद नहीं कर पाया। यहां ऐसा हुआ कि मानो मैं राग खो चुका हूं। मैंने ढूंढा कि मैं कोरस याद कर पाऊं। बहुत कोशिश करने पर भी याद नहीं आया और मैंने कहा, ओह प्रभु, याद करने में मेरी सहायता कर। उसने कहा, नहीं, वो तो रात का गीत था, मेरा गीत था कि तुम कष्ट की रात को काट सको। और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 42 पद 9 से लेकर 10 तक। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? जब कुछ गलत हो जाता है, यही एक बात है जो लोग अक्सर मसीहों से पूछते हैं, जब ये घटना घटित हुई तुम्हारा परमेश्वर कहाँ था? तुम्हारा परमेश्वर कहाँ था? मानो जैसे जीवन की सब समस्याओं से छुड़ाने का उत्तरदायित्व परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने सारी समस्याओं से छुड़ाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। वास्तव में एक प्रतिज्ञा है जिसे आप पसंद नहीं करेंगे, जो कहती है, भजन संहिता 34:19 पर, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। मैं इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूं। मुझे विपत्तियां पसंद नहीं। विपत्तियों में लोग सदा कहते हैं, तब तुम्हारा परमेश्वर कहां था? जब बच्चे कोलंबिया में भूख से मर रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर कहां था? जब अल्जीरिया में भूकंप आया, तुम्हारा परमेश्वर कहां था? जब संत हेलेना पर्वत में ज्वालामुखी फूटा था, तब तुम्हारा परमेश्वर कहां था? यदि हमारे पास उत्तर ना हो तो ये सब बातें हमें निराश कर देती है। भजन 42 पद 11, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। एक दिन मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा उन विपत्तियों के लिए भी जो आज विद्यमान है। फिर भी मैं उसकी प्रशंसा करूंगा।